वायुताप का क्षैतिज वितरण, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। धरातल पर वायु दाब का वितरण सम दाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को सम दाब रेखा आइसोबार कहते हैं। भूपटल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक वायु दाब के वितरण को भी समान रूप से नियंत्रित करते हैं। अतः विषुवत रेखा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, न्यून दाब पाया जाना स्वाभाविक है। इसके विपरीत ध्रुवों की ओर तापमान क्रमशः कम होने के कारण वायु दाब में क्रमिक वृद्धि होनी चाहिए थी, किंतु भूतल पर औसत वायु दाब वितरण मानचित्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वायुदाब संबंधी उपयुक्त व्यवस्था नहीं पाई जाती। वास्तविकता तो यह है कि विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच कर्क एवं मकर रेखाओं के निकट उच्च वायुदाब क्षेत्र तथा आर्कटिक एवं अंटार्कटिक ध्रुवीय वृत्तों के निकट न्यून वायुदाब क्षेत्र भी पाए जाते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो धरातल पर उच्चतम तथा न्यूनतम वायुदाब क्रमशः ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा के पास पाया जाता तथा इसकी उत्पत्ति का कारण पूर्ण रूप से तापीय थर्मल होता, किंतु ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती। पृथ्वी में दैनिक आवर्तन होता है, अतः गत्यात्मक डायनेमिक कारणों से ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली वायु धाराएं अपने सीधे मार्ग से मुड़ जाती हैं। यदि इस आवर्तनशील पृथ्वी का तल समांगी होता, अर्थात इस पर केवल जल या स्थल ही पाया जाता, तो भी वायु धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी पवनों तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी पवनों के रूप में सीधे चल सकने में असमर्थ होती। इसका मुख्य कारण वायु धाराओं एवं पृथ्वी तल का घर्षण फ्रिक्शन है। संघर्षण बल के कारण ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के पश्चात वायु की इन विशाल धाराओं का विखंडन हो जाता है। ये पृथक पृथक भौरों एडीज में विभक्त हो जाती हैं। इन भंवर धाराओं के केंद्र पर वायुमंडलीय दाब अपेक्षाकृत न्यून होता है। शीतोष्ण कटिबंध में 60 डिग्री अक्षांश के पास महासागरों पर वायु के ऐसे भंवर नियमित रूप से पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ का औसत वायु दाब उत्तर अथवा दक्षिण स्थित क्षेत्रों की अपेक्षा कम रहता है। यह जान लेना आवश्यक है कि धरातल पर पवनों के प्रवाह में व्यवधान का एकमात्र कारण स्थलाकृतियां ही नहीं बल्कि वायुमंडल में पवनों की गतियां तथा उनके अन्य विशेषताएं भी हैं, जिनका प्रभाव नीचे की परतों के रूप में दिखाई पड़ता है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों के समीप पाए जाने वाले इन अल्पदाब क्षेत्रों को उपध्रुवी निम्न दाब पेटियां सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। इन उच्च अक्षांशी निम्न दाब पेटियों तथा विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी के मध्य में प्रत्येक गोलार्ध में एक ऐसे क्षेत्र का पाया जाना स्वाभाविक है, जहां से धरातल पर वायु धाराओं का अपसरण डाइवर्जेंस होता है। इस क्षेत्र में वायु धाराएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। धरातल पर पहुंचकर ये धाराएं उपध्रुवी तथा भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटियों की ओर प्रवाहित होती हैं। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य अपेक्षाकृत अधिक वायु दाब के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। इस उच्च वायु दाब क्षेत्र के केंद्र भाग में वायु के अवतलन के कारण आकाश प्रायः स्वच्छ और मौसम शुष्क हुआ करता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यदि आवर्तनशील पृथ्वी का तल समांगी होता तो चित्र के समान वायुदाब में कुल 7 पेटियां पाई जाती, जो अविच्छिन्न रूप में ग्लोब के चारों ओर फैली रहती हैं। किंतु भूतल पर जल एवं स्थल के असमान वितरण के फलस्वरूप तापमान तथा वायुदाब के वितरण में जटिलता उत्पन्न हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की प्रधानता के कारण इन वायुदाब पेटियों की निरंतरता कंटिन्यूटी भंग हो जाती है। वायुदाब की उपयुक्त तथा कथित पेटियां वास्तव में उच्च एवं निम्न दाब केंद्रों अथवा कोषों सेल के रूप में पाई जाती हैं। इन कोषों का विस्तार मुख्य रूप से पूर्व पश्चिम होता है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की प्रधानता तथा उच्च अक्षांशों में विस्तृत भूखंड खंडों में उत्तरोत्तर कमी के कारण वायुदाब की पेटियां निरंतरता वायुदाब की पेटियों की निरंतरता में अपेक्षाकृत कम व्यवधान पड़ता है। भूतल पर पाए जाने वाली दाब व्यवस्था को उत्पन्न करने वाले कारकों को स्थूल रूप में 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला तापी कारण, दूसरा गत्यात्मक कारण। धरातल पर इन कारणों से उत्पन्न विभिन्न वायुदाब पेटियों का विवरण आगे दिया जा गया है और साथ ही प्रत्येक पेटी की उत्पत्ति के कारणों की समीक्षा भी की गई है। वायुदाब की पेटियां प्रेशर बेल्ट्स। पृथ्वी तल पर निम्नलिखित वायुदाब पेटियां प्रत्येक गोलार्ध में पाई जाती हैं। पहला भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। चौथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र पोलर हाइज। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक है, किंतु इस निम्न दाब पेटी का अधिक भाग भूमध्य रेखा के उत्तर फैला हुआ है। सूर्यातप की अधिकतम मात्रा उपलब्ध होने के कारण धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे उसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। हवाएं गर्म होने से फैल जाती हैं, जिससे हल्की होकर ऊपर उठती हैं। यहाँ वर्ष भर वायुमंडल में संवहन धाराएं कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होती हैं। यहाँ की वायु में आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होती है। इस पेटी में दोनों गोलार्धों से चलने वाली व्यापारिक हवाओं ट्रेड विंड्स का अभिसरण भी होता है तथा धरातल पर वायु शांत अथवा हल्की तथा अनिश्चित दिशा से चलती है। इस कारण इस पेटी को डोलड्रम्स की संज्ञा प्रदान की जाती है। उपयुक्त कारणों से भूमध्य रेखा के आसपास वायुदाब अपेक्षाकृत न्यून रहता है। औसत वार्षिक वायुदाब वितरण तथा जनवरी के दाब वितरण मानचित्रों पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की यह पेटी अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ती है, कि जबकि जुलाई में यह अधिक अनियमित और अस्पष्ट हो जाती है। जुलाई में इस पेटी की स्थिति भूमध्य रेखा की उत्तर की ओर हो जाती है। सूर्य के उत्तरायण अथवा दक्षिणायन होने के साथ ही यह पेटी क्रमशः उत्तर अथवा दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। जुलाई में इस पेटी का विस्तार उत्तरी अफ्रीका में लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा के कुछ उत्तर तक हो जाता है, किंतु जनवरी में यह पेटी खिसक कर दक्षिण की ओर चली जाती है। इस महीने में गिनी में इसका विस्तार 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहता है। दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु जनवरी में दक्षिणी हिंद महासागर तथा दक्षिणी महाद्वीपों पर इन निम्न दाब पेटी का विस्तार क्रमशः 10 डिग्री तथा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक हो जाता है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान ऊंचा रहने से वायुदाब सदैव नीचा रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस पेटी की उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है, किंतु अन्य भागों की तुलना में यहाँ वायुदाब में अधिक समानता पाई जाती है। किंतु यहाँ वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव विशेष उल्लेखनीय होता है। इस वायुदाब पेटी की अन्य विशेषताओं का विवरण पवनों की पेटी के संदर्भ में अधिक विस्तार पूर्वक दिया गया है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स विषुवत रेखा के दोनों ओर 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। इन पेटियों में कई उच्च वायुदाब केंद्रों अथवा कोशों की स्थापना विशेष उल्लेखनीय है। ये उच्च वायुदाब केंद्र पृथ्वी तल पर वायुदाब वितरण के प्रमुख तत्व हैं। यद्यपि इनकी उत्पत्ति के कारणों की पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनकी उत्पत्ति तापी कारणों से नहीं बल्कि गत्यात्मक कारणों से हुई है। इस पेटी में धरातल से कुछ ऊंचाई पर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी के ऊपर से प्रभावित होने वाली वायु धाराओं का अपसरण तथा अवतलन भी होता है। अवरोहण के कारण संपीडन होने से इन हवाओं के तापमान में वृद्धि हो जाती है। यहाँ सदैव उच्च वायुदाब एवं मेघ रहित आकाश पाए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि विश्व के सभी उष्ण मरु प्रदेश इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की उत्पत्ति मूलतः गत्यात्मक कारणों से हुई। भूमध्य रेखा के समीप धरातल से ऊपर उठी हुई वायु तरंगों एयर करेंट्स के कारण वहां ऊपरी वायु स्तंभों का दाब अधिक हो जाता है, जिससे वहां एकत्रित वायु राशि ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में ये उच्च स्तरीय हवाएं क्रमशः अपनी दाईं ओर तथा बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जब ये हवाएं 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों तक पहुंचती हैं, तब इनकी दिशाएं पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। इसके फलस्वरूप इन अक्षांशों के ऊपर वायु एकत्रित हो जाती है। इन अक्षांशों के ऊपर वायु के एकत्रित होने का दूसरा कारण जेट स्ट्रीम का प्रवाहित होना है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के दैनिक आवर्तन के कारण ध्रुवों की ओर से वायु खींचकर कर्क तथा मकर रेखाओं के पास एकत्रित हो जाती है, जिससे इनके समीपवर्ती अक्षांशों में वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। इन उच्च दाब के क्षेत्रों को अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब स्पेन से घोड़े लेकर चलने वाले जलयान नई दुनिया उत्तरी अमेरिका की ओर जाते थे, तब इन अक्षांशों में पवन के न चलने से उनका आगे बढ़ना कठिन हो जाता था। नावों की गति धीमी हो जाने से यात्रा में अधिक समय लगता था तथा उनके भोजन का भंडार कम हो जाता था। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए जलयान का भार कम करना आवश्यक हो जाता था, जिससे कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसी कारण इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। दोनों गोलार्धों में ग्रीष्म काल में उच्च वायुदाब के केंद्र महासागरों के ऊपर पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के पठारों के ऊपर ग्रीष्म ऋतु में भी साधारण कोटि का उच्च दाब केंद्र विकसित हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध की शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप के आंतरी भाग अर्थात साइबेरिया में वायुदाब अधिक हो जाता है। इन उच्च दाब पेटियों की मध्यवर्ती क्षेत्रों में प्रायः पवन प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा वहां शांत क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं। वायु के नीचे उतरने के कारण इन अक्षांशों में वायुमंडल शांत रहता है, धरातल पर पवन प्रवाह नहीं होता है। यदि हल्की हवा चलती भी है तो उसकी दिशाएं अनिश्चित होती हैं। आकाश का स्वच्छ होना इस पेटी की मुख्य विशेषता है। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के समीप 60 से 70 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं। उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र में अल्प दाब के अनेक केंद्र अथवा कोष पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस पेटी का विस्तार उपयुक्त अक्षांशों में पृथ्वी के चारों ओर होता है। इसका कारण महासागरों का विस्तार है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में इन अक्षांशों में स्थल खंडों की प्रधानता होने के कारण इस पेटी की निरंतरता भंग हो जाती है। निम्न वायुदाब केंद्र केवल महासागरों के ऊपर ही पाए जाते हैं। इनमें उत्तरी प्रशांत महासागर पर स्थित अल्यूशियन निम्न दाब केंद्र तथा उत्तरी आंध्र महासागर पर आइसलैंड का निम्न दाब केंद्र विशेष महत्वपूर्ण है। शीत ऋतु में समीपवर्ती महासागरों एवं महाद्वीपों के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है, जिससे उपयुक्त निम्न दाब केंद्र के विकास में सहायता मिलती है। किंतु ग्रीष्म ऋतु में स्थल और जल के तापमान में कम अंतर होने से इस पेटी का विस्तार अधिक हो जाता है तथा वहां अधिक नियमित भी हो जाती है। ध्रुवी उच्च दाब क्षेत्र पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तापमान वर्ष भर कम रहने के कारण ध्रुवों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों का धरातल सदैव हिमच्छादित रहता है। इसलिए धरातल के निकट की वायु अत्यधिक शीतल और भारी होती है। यद्यपि पृथ्वी के दैनिक आवर्तन के कारण ध्रुवों पर की वायु की परतें पतली हो जाती हैं, तथापि वहां की अत्यधिक शीतलता और उसके भारीपन के कारण यहां वर्ष भर उच्च दाब पाया जाता है। यहां उच्च वायु दाब की उत्पत्ति में गत्यात्मक कारणों की अपेक्षा तापीय कारण अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों की अत्यधिक शीतलता के कारण यहां धरातलीय दाब संबंधी आंकड़े प्रचुर मात्रा में नहीं किए जा सकते, जिनसे इन क्षेत्रों के वायुदाब का यथार्थ में मूल्यांकन करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। त्रिवार्था के अनुसार यदि अधिकांश विद्वानों ने ध्रुवीय क्षेत्रों को छिछले एवं ताप से उत्पन्न दाब क्षेत्रों का स्थान माना है, तथापि आधुनिक खोजों के आधार पर इनके विपरीत प्रमाण मिलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अंटार्कटिक महाद्वीप पर ध्रुवीय वायु राशियों के कारण अत्यधिक उच्च वायुदाब अंकित किए जाते हैं। पवन सामान्य परिचय विंड्स जनरल इंट्रोडक्शन। मौसम के विभिन्न घटकों में पवनों का सर्वाधिक महत्व है। यह जलवायु का ऐसा तत्व है जो तापमान एवं वृष्टि आदि अनेक तत्वों पर प्रभावकारी नियंत्रण रखता है। तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली वायु ही ऊष्मा तथा आर्द्रता को भूतल के एक भाग से दूसरे भाग को स्थानांतरित करती है। तूफान, मेघ, वृष्टि अथवा मौसम के अन्य घटकों की उत्पत्ति में पवन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली कारक माना जाता है, किंतु यह भी सत्य है कि स्वयं पवन भी मौसम के अन्य तत्वों द्वारा नियंत्रित होता है। ज्ञातव्य है कि पवन अधिक वायुदाब से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होता है तथा पवन की दिशा और वेग दोनों ही वायुदाब प्रवणता पर निर्भर करते हैं। वस्तुतः वायु संचार का मूल कारण धरातल के विभिन्न भागों में उपस्थित तापांतर है, जो वायुदाब में अंतर उत्पन्न करता है। परिभाषा एवं महत्व। धरातल के लगभग समानांतर प्रवाहित होने वाली वायु को पवन विंड्स कहते हैं। त्रिवार्था के शब्दों में पवन ऐसी गतिशील वायु है जिसकी दिशा अनिवार्य रूप से पृथ्वी तल के समानांतर होती है। बायर्स के अनुसार पवन मात्र गतिशील वायु है जिसका मापन उसके क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किया जाता है। वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। जब वायु धरातल से ऊपर की ओर अथवा ऊपर से नीचे की ओर गतिशील होती है, तब हमें इसका अनुभव नहीं होता और उसे हम वायु तरंग एयर करंट कहते हैं। मौसम के विभिन्न घटकों जैसे मेघ, वृष्टि, तड़ित झंझा आदि की उत्पत्ति में इन वायु तरंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यद्यपि वायुमंडलीय संचार प्रणाली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम के यथार्थ ज्ञान के लिए उसकी दोनों गतियों का ज्ञान अपेक्षित है, तथापि धरातलीय पवनों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है, जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला यह है कि पवनों के द्वारा निम्न अक्षांशों और उच्च अक्षांशों के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप अक्षांशीय ताप संतुलन बना रहता है। दूसरा यह है कि पवनों के द्वारा ही महासागरों से महाद्वीपों के दूरस्थ आंतरिक क्षेत्रों तक आर्द्रता पहुंचाई जाती है, जिससे वृष्टि संभव होती है। पवन के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड वेलोसिटी। पवन के वेग को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें चार को प्रमुख माना जाता है। पहला वायुदाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, पृथ्वी का आवर्तन रोटेशन। तीसरा घर्षण फ्रिक्शन। चौथा पवन का अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ विंड। वायुदाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट। सामान्यतया वायुदाब में जितना ही अधिक अंतर होता है, पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। वायुदाब प्रवणता जब प्रपाती होती है, तब पवन का वेग तीव्र होता है। जब प्रवणता मंद होती है, तब पवन का वेग भी कम हो जाता है। ऋतु मानचित्रों पर समदाब रेखाओं की सघनता अथवा विरलता से पवन के वेग का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी का आवर्तन रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के आवर्तन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल डिफ्लेक्टिव फोर्स, जिसे हम कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं, पवन की दिशा को मोड़ देता है। इसी कारण से उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने पथ के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। इस बल के अभाव में पवन सदैव समभार रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सीधे चला करता है। पृथ्वी की दैनिक गति द्वारा उत्पन्न विक्षेपक बल अक्षांश के साइन पर निर्भर करता है, अतः विषुवत रेखा पर यह शून्य होता है तथा ध्रुवों के पास इसकी मात्रा अधिकतम होती है। वास्तव में विक्षेपक बल वास्तविक बल नहीं बल्कि आभासी बल है, जो पृथ्वी के आवर्तन तथा उसके तल पर गतिशील वायु के कारण उत्पन्न होता है। विक्षेपक बल के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए लेखक के जलवायु विज्ञान नामक ग्रंथ का अवलोकन करें। जब वायु दाब प्रवणता बल तथा विक्षेपक बल से संतुलन स्थापित हो जाता है, तब पवन का प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर होता है। इस प्रकार समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाली हवाओं को भूविक्षेपी पवन जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। भूविक्षेपी पवन अपने आदर्श रूप में वायुमंडल के ऊपरी भागों में ही पाया जाता है, क्योंकि वहां घर्षण का प्रभाव नगण्य होता है तथा समदाब रेखाएं सीधी होती हैं। धरातल के निकट घर्षण बल के कारण भूविक्षेपी पवनों का विकास नहीं हो पाता है। इस पवन की गति पर वायुदाब प्रवणता, अक्षांश तथा वायु के घनत्व का प्रभाव पड़ता है। यह पवन वायुदाब प्रवणता का समानुपाती होता है। बायर्स के अनुसार समदाब रेखाएं जितनी ही सघन होंगी, अक्षांश जितना ही निम्न होगा तथा वायु का घनत्व जितना ही कम होगा, भूविक्षेपी पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। बायर्स के अनुसार समदाब रेखाएं जितनी ही सघन होंगी, अक्षांश उतना ही निम्न होगा तथा वायु का घनत्व जितना ही कम होगा, भूविक्षेपी पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। पवन तथा वायुदाब वितरण के संबंध में बाइज बैलट नामक डच मौसम वैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण नियम प्रकाशित किया, जो आगे चलकर मौसम विज्ञान में बाइज बैलट का नियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस नियम के अनुसार यदि उत्तरी गोलार्ध में कोई व्यक्ति पवन की दिशा की ओर पीठ करके खड़ा हो, तो उसकी बाईं ओर निम्न वायुदाब तथा दाईं ओर उच्च वायुदाब होगा। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब दाईं ओर तथा उच्च वायुदाब बाईं ओर होगा। वास्तव में विलियम फेरल प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के आवर्तन से उत्पन्न विक्षेपक बल के प्रभाव का पता लगाया था। उनके मतानुसार उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक गतिशील वस्तु अपने पथ के दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरल्स का नियम, फेरल्स लॉ कहा जाता है। घर्षण का प्रभाव, फ्रिक्शन फोर्स। पवन के वेग और उसकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स का विशेष महत्व होता है। इस बल की उत्पत्ति धरातल और उसके ऊपर चलने वाले वायु के संघर्षण से होती है। यह बल पवन प्रवाह की दिशा में विपरीत कार्य करता है। यह वायु के वेग के वर्ग का समानुपाती होता है। धरातल जितना ही खुरदुरा होगा, घर्षण बल उसी अनुपात में अधिक होगा तथा पवन और समदाब रेखाओं के बीच के कोण में समानुपातिक वृद्धि हो जाएगी। धरातल से लगभग 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाले भागों को घर्षण स्तर, फ्रिक्शन लेयर कहा जाता है। इसके ऊपर वायुमंडल में घर्षण बल का प्रभाव नगण्य हो जाता है। स्थल खंडों पर समदाब रेखाओं के साथ पवनों के द्वारा 20 डिग्री से 25 डिग्री के कोण तथा सागर तल पर केवल 10 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं। घर्षण स्तर के ऊपर पवन का वेग क्षोभ मंडल तक बढ़ता जाता है, किंतु उसको पार करते ही वह पुनः कम होने लगता है। पवन का अपकेंद्र बल। पवन के वेग को प्रभावित करने वाला अन्य महत्वपूर्ण कारक स्वयं पवन का अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जब पवन का मार्ग वक्र अथवा वृत्ताकार होता है तब इस प्रकार के बल की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का बल विभिन्न प्रकार के पवनों के वृत्ताकार पथ के द्वारा पथ के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जब कोई कण समान गति से वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तब उस पर मार्ग के केंद्र अथवा आवर्तन की दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस बल के कारण यह कण वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। जब किसी कण पर केंद्र की दिशा में एक बल कार्य करता है तब इसके बराबर तथा विपरीत दिशा में एक बल एक दूसरे बल का होना स्वाभाविक है जो इस कण को केंद्र से दूर फेंकने का प्रयत्न करता है। इस प्रतिक्रियात्मक बल को ही अपकेंद्र अथवा केंद्रापसारी बल कहते हैं। अपकेंद्र बल बराबर संहति गुणे वेग का वर्ग बटे त्रिज्या। जब समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती हैं तो पवन के वेग पर अपकेंद्र बल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ती है। चक्रवात अथवा प्रतिचक्रवात से ही इस बल की उत्पत्ति होती है। इन वायुदाब प्रणालियों के अंतर्गत जब वायुदाब प्रवणता के अनुसार पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है तो विक्षेपक बल के कारण वह सीधे पथ से विचलित हो जाता है तथा समदाब रेखाओं के समानांतर हो प्रवाहित होने लगता है। किंतु वृत्ताकार अथवा वक्र पथ में घूमने वाले इस पवन पर अपकेंद्र बल कार्य करने लगता है। पवन का वेग तथा उसके पथ की वक्रता जितनी ही अधिक होगी यह बल उतना ही अधिक तथा विक्षेपण भी उसी अनुपात में होगा। उत्तरी गोलार्ध में विक्षेप के कारण पवन अपने पथ के दाईं ओर मुड़ जाता है जिससे अपकेंद्र बल के कारण और भी वृद्धि हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार का विक्षेप पथ के बाईं ओर होता है। जब वृत्ताकार मार्ग से चलने वाला पवन में वायुदाब प्रवणता बल विक्षेपक बल एवं घर्षण बल में संतुलन स्थापित हो जाता है तब उसे प्रवणता बल पवन ग्रेडियंट विंड कहते हैं। ये पवन वायुमंडल के ऊपरी भाग में समदाब रेखाओं के समानांतर चलते हैं किंतु धरातल पर घर्षण के कारण ये निम्न दाब की ओर मुड़कर न्यून कोण पर काटते हैं। चक्रवात अथवा प्रतिचक्रवात में ऐसी हवाओं को चक्रगतिक पवन साइक्लोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की विभिन्न गतियों को तीन स्थूल वर्गों में विभक्त किया जाता है। प्रारंभिक परिसंचरण प्राइमरी सर्कुलेशन, द्वितीयक संचरण सेकेंडरी सर्कुलेशन तथा तृतीयक परिसंचरण टर्शरी सर्कुलेशन। प्रारंभिक परिसंचरण से तात्पर्य भूतल पर चलने वाली नियतवाही पवनों से है जिनका संबंध वायुदाब की विभिन्न पेटियों से होता है। सनमार्गी पवन ट्रेडविंड, पछुआ पवन वेस्टरलीज तथा ध्रुवीय पवन पोलर विंड इसके उदाहरण हैं। वस्तुतः प्रारंभिक पवन तंत्र के द्वारा ही अन्य प्रकार की वायु संचार प्रणालियों का मूल ढांचा तैयार होता है। द्वितीयक परिसंचरण के अंतर्गत चक्रवातों प्रतिचक्रवातों मौसमी हवाओं सीजनल विंड तथा वायु राशियों का अध्ययन किया जाता है। अंत में तृतीयक परिसंचरण के अंतर्गत स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करने वाले एवं स्थानीय कारणों से उत्पन्न स्थानीय पवन, लोकल विंड सम्मिलित किए जाते हैं। इन स्थानीय पवनों का प्रभाव सीमित क्षेत्रों पर ही पड़ता है। धरातल पर पवन पेटियां, विंड्स बेल्ट, जल एवं स्थल के असमान वितरण, पृथ्वी तल के उच्चावचन तथा पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होने वाले ऋतु परिवर्तन द्वारा विभिन्न कारणों से धरातल पर एक निश्चित पवन प्रणाली स्थापित हो जाती है। जैसा कि वायुदाब के संबंध में बताया गया है, तापीय एवं गत्यात्मक कारणों से पृथ्वी तल पर आदर्श रूप में 7 वायुदाब पेटियों की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार धरातल पर पवनों का प्रवाह सीधे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर न होकर प्रत्येक गोलार्ध में 3 कोशों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल 7 वायुदाब पेटियां तथा 6 नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती हैं। इन पवनों की दिशाओं में अस्थायित्व पाए जाने के कारण इन्हें अस्थायी पवन, परमानेंट विंड्स की संज्ञा प्रदान की जाती है। चूंकि इनका विस्तार संपूर्ण भूमंडल पर होता है, अतः इन्हें ग्रही पवन प्रणाली, प्लैनेटरी विंड सिस्टम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन पवन पेटियों में पवन का प्रवाह प्रायः अक्षांश रेखाओं के लगभग समानांतर पूर्व से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इस प्रकार धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली यामोत्तरीय, मेरिडिनल न होकर कटिबंधीय, जोनल हो जाती है। विभिन्न पवन पेटियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। प्रशांत मंडल, डोलड्रम्स। प्रशांत मंडल औसत रूप में विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी में वर्ष भर प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती हैं। वास्तव में इस पेटी की स्थिति दोनों गोलार्धों के व्यापारिक पवनों के मध्य होती है। वायुदाब प्रवणता मंद होने के कारण यहाँ पवन मंद गति से विभिन्न दिशाओं से चला करता है। दिन के लगभग 1/3 भाग में वायुमंडल बिल्कुल शांत रहता है। दिन के तीसरे पहर संवहन धाराओं की प्रचंडता के कारण प्रबल त्वरित झंझा, हैवी थंडरस्टॉर्म की उत्पत्ति होती है। इसके साथ ही तीव्र वायु के झोंके भी आया करते हैं। भूमध्य रेखा के समीप दोनों गोलार्धों से आने वाले व्यापारिक पवनों का अभिसरण कन्वर्जेंस होने से इस पेटी को भूमध्य रेखीय अभिसरण पेटी अथवा अंतरोण अभिसरण